नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने वेदों के बारे में जरूर से सुना ही होगा और आप में से कुछ लोगों ने वेदों के कुछ मंत्र भी सुने होंगे, जैसे गायत्री मंत्र। परंतु आपने कभी ये विचार किया कि ये मंत्र हम तक कैसे पहुँचे, मतलब मानव जाति को ये मंत्र कैसे प्राप्त हुए, हमारे ऋषियों को ये कैसे मिले? वेदों की कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी इंटरेस्टिंग भी है। वेदों को क्यों अपौरुषेय कहते हैं और वेदों का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मॉडर्न साइंस और वेदों में क्या समानता है? अनेक ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे, तो चलिए आज इनके उत्तर जानें। मेरा नाम लव शर्मा है। आज का वीडियो लंबा होगा बट इंटरेस्टिंग रखने का प्रयत्न जरूर करूंगा, इसे अंत तक जरूर देखिए। तो वेद क्या है? सनातन धर्म, जो आजकल हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ वेद है। वेद शब्द संस्कृत भाषा में विद ज्ञानी धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित, जाना हुआ, विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। वेद वैदिक संस्कृत में बोली या लिखी गई है। वैदिक संस्कृत आज के संस्कृत से थोड़ी अलग है। वैदिक संस्कृत में आप स्वर का भेद देखोगे और मॉडर्न या क्लासिक संस्कृत में ग्रामर बेटर है, जिसका श्रेय महर्षि पाणिनि को जाता है। इसके बारे में और भी पढ़ने के लिए धर्म विकी का ये लेख पढ़िए। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इस ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है, जिसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है। यजुर्वेद, जिसमें कार्य क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीत में मंत्र हैं। अथर्ववेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। हर वेद स्वयं में पर्याप्त है। इनमें कई ऐसे मंत्र हैं जो एक से ज़्यादा वेदों में पाया जाता है, जैसे अधिकतर सामवेद मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जिससे ये पुष्टि भी होती है कि इसमें कोई विपरीत या कॉन्ट्राडिक्ट विचार नहीं है। इसके चार भागों में विभाजन करना असंभव है। तैतरीय ब्राह्मण 3:10:11:4 में कहा है, अनंतावै वेदा, अर्थात वेद अनंत है या असीमित है। इस मंत्र में ऋषि भारद्वाज और इंद्रदेव के बीच की वेदों का ज्ञान को लेकर चर्चा है, जहां इंद्रदेव भारद्वाज को कहते हैं कि वेद अनंत है, उन पर कोई भी प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर सकता। ये मंत्रों की संख्या तो वह है जो हमें उपलब्ध है, ऐसे ही अनेक मंत्र है जो हमें उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या है इस वेद में जो लोग इतना मानते हैं और क्यों इसे शब्द प्रमाण भी कहते हैं? शब्द प्रमाण जानने से पहले देखना होगा कि प्रमाण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य का ज्ञान कराने में सहायता करे, अर्थात वह बात जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो। प्रमाण न्याय दर्शन का मुख्य विषय है। यथार्थ अनुभव को प्रमाण कहते हैं। स्मृति तथा संशय या डाउट आदि को प्रमाण नहीं मानते। देव अज्ञात तत्व के अर्थ ज्ञान को प्रमाण कहा है। अंधिकत अर्थ के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला कारण प्रमाण है। इसी को शास्त्र दीपिका में कहा है, कारण दोष बाधक ज्ञान रहितम अग्रहित ग्राही ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जिस ज्ञान में अज्ञात वस्तु का अनुभव हो, अन्य ज्ञान से बाधित ना हो एवं दोष रहित हो, वही प्रमाण है। प्रमाणों की विशेषता होती है कि यह अबाधित हो, अर्थात विषय का ज्ञान प्रमा है। इसका अर्थ यह है कि जिस विषय का ज्ञान हुआ वह किसी पूर्व ज्ञान से खंडित ना हो और किन्हीं अन्य प्रमाणों से बाधित, अर्थात काउंटर नहीं किया जा सके। और दूसरा अंधिकत, जिसका ज्ञान हुआ उसका पूर्व ज्ञान नहीं था, अर्थात ज्ञान में नवीनता। तीसरा असंदिग्धत, जो ज्ञान मिला वह डाउटफुल नहीं होना चाहिए, मतलब यथार्थ या कन्फर्म्ड ज्ञान हो। और अंत में चौथा स्मृति विलक्षणा, जो ज्ञान स्मृति से न उत्पन्न हुआ हो। स्मृति कभी कभी गलत ज्ञान भी दे सकता है, मतलब फॉल्स मेमोरी। दृश्यम बॉलीवुड की एक फेमस मूवी है, जिसमें फॉल्स मेमोरी का कैसे दुरुपयोग किया गया है, झूठ बोलकर आसानी से दृश्य मूवी में बताया गया है। और YouTube का ये वीडियो जिसमें फॉल्स मेमोरी पर एक्सपेरिमेंट और डिटेल चर्चा हुई है। और इसीलिए जो ज्ञान स्मृति से हो वह यथार्थ होना जरूरी नहीं। अब इन्हीं विशेषताओं से हम प्रमाणों के प्रकार जानेंगे। वैसे तो अनेक प्रकार के प्रमाण होते हैं, इस संदर्भ में हम केवल 3 प्रमाणों के बारे में बात करेंगे और इन प्रमाणों को डिटेल में समझने के लिए ऋषि गौतम के न्याय सूत्र जरूर पढ़ें या हम इन डिटेल्स की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। पहला प्रमाण, प्रत्यक्ष। हमारे 5 सेंसेस या इंद्रियों से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कोर्ट में भी आई विटनेस की महत्ता बहुत होती है क्योंकि उसने घटना घटते हुए देखा है। दूसरा, अनुमान। प्रत्यक्ष को लेकर जो ज्ञान तथा ज्ञान के कारण का पता चले उसे अनुमान कहते हैं। जैसे हमने बराबर देखा है कि जहां धुआं रहता है वहां आग रहती है। अनेक दर्शन इन्हीं 2 प्रमाणों में अन्य प्रमाणों का समावेश मानते हैं, मतलब प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के रहते अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मॉडर्न साइंस भी सिर्फ इन्हीं 2 प्रमाणों से अपनी सारी थ्योरीज की पुष्टि या वैलिडेट करते हैं। और अंत में तीसरा प्रमाण, शब्द प्रमाण। पुरुष द्वारा किए गए उपदेश को शब्द प्रमाण मानते हैं। आप पुरुष के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। न्याय सूत्र में कहा है, आप तो उपदेशः शब्दः। जैसे आपको कोई रेयर बीमारी है और ये जानकारी आपको केवल डॉक्टर ही दे सकता है क्योंकि यह डॉक्टर की एक्सपर्टीज है, उसी तरह सनातन धर्म में जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर आप पुरुष या ऋषियों द्वारा किए गए उपदेश होते हैं और इन्हीं ऋषियों का स्रोत या सोर्स वेद होते हैं, इसलिए वेदों को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो क्या है विशेषता है शब्द प्रमाण अर्थात वेद और अन्य प्रमाणों में? क्या है वेद का सब्जेक्ट मैटर जो अन्य में नहीं है? वेदों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कई अन्य विशेषताओं से अलग हैं और कई विद्वानों द्वारा चर्चा की गई है। आस्तिकत्वम, ईश्वर सत्ता को मानता हो। अलौकिकत्वम, ईश्वरीय ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जिसका विषय हो। अपौरुषत्वम, जो मानव द्वारा ना जाना पाए। अनंतत्वम, अनंत हो न आदि हो। सनातनत्वम, सनातन हो। धर्म साधकत्वम, धर्म बतलाता हो। सर्वज्ञान मूलकत्वम, और विद्याओं का स्रोत हो। आजकल बहुत लोग वेदों की तुलना मॉडर्न साइंस के साथ करते हैं। क्या तुलना सही है? तुलना तो उनके बीच होती है जिनका उद्देश्य या सब्जेक्ट मैटर एक जैसा हो। आज का मॉडर्न साइंस बहुत एडवांस है। मानव या हमने इससे और इसमें बहुत उन्नति की है। सेलेशियल बॉडीज से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक का ज्ञान आज हमारे पास है। पर क्या हम खुश हैं, सुखी हैं, और क्या इसका अंत है? इसमें तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं है क्योंकि इसके उत्तर किसी भी इंस्ट्रूमेंट या सर्वे से नहीं निकल पाता और यहीं तक मॉडर्न साइंस या ह्यूमन साइकोलॉजी की सीमा है। यह कभी भी आपको संतुष्ट या सुखी होना नहीं सिखा सकता। तो क्या वेद इनके प्रश्नों के उत्तर देता है? जी हाँ, वेद का विषय ही अदृष्ट है और वेद को अपौरुष भी कहते हैं, मतलब ये ज्ञान जो मानव जाति कभी नहीं जान सकती, जैसे आत्मा, ब्रह्म, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, ईश्वर, यज्ञ, देव, कर्म, पुनर्जन्म आदि। सांख्य सूत्र में कहा है, न पौरुषत्वम तत्कर्तुः पुरुषस्य भावतः। अर्थात वेद पौरुष पुरुषकृत नहीं है क्योंकि उनका रचयिता कोई पुरुष नहीं है। जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति होने से समस्त विद्याओं के भंडार वेद की रचना में असमर्थ है। वेद मनुष्य की रचना न होने से उनका अपौरुषित्व सिद्ध ही है। इन सबको किसी इंस्ट्रूमेंट से न जान सकते हैं और ना ही वैलिडेट या इसकी पुष्टि कर सकते हैं, परंतु हाँ, इन सब वस्तुओं का आप बोध कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म, वेदों में ऐसे अनेक प्रक्रिया है या साधन है जिससे आप इस ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, परंतु कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने की विधि नहीं है। इस प्रक्रिया से जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान से आत्मा का बोध होगा। गीता में भी श्री कृष्ण ब्रह्म के विषय में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेत्यो वेदान्तत्वेद विदेव चाहम। अर्थात मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन उनका अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही विद्य जानने योग्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अन्य उदाहरण, जब वर्षा ना हो तब वर्षा उत्पन्न करने के लिए ऋषिगण यज्ञ करते थे और यज्ञ के फल स्वरूप वर्षा होती है। और इसी तरह अश्वमेघ यज्ञ, पुत्र कामिष्टि यज्ञ आदि, इन सब यज्ञों की विधि केवल वेद में उपलब्ध है, अन्य कहीं नहीं, जैसे पुरुष सूक्त में बताया गया है।
यत् पुरुषेण हविषा आदेवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिदाज्यं ग्रीष्म इद्दं शरद्धविः।
वेदों का विषय जरूर अदृष्ट है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि वेदों में दृष्ट वस्तुओं पर कुछ नहीं है। दृष्ट वस्तुओं का उपयोग केवल अदृष्ट विषयों को समझाने के लिए किया गया है, जो उदाहरण या समानता या एनालॉजी के रूप में है। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि जब वेद अपौरुष है तो मानव जाति को कैसे मिला। बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.10 का उद्घोष है कि वेद ईश्वर की श्वास या सांस है।
इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राण्यानुव्याख्यानानस्यवेतानि।
जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है, हे मैत्रीय, इस प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद है, ये इस महद्भूत के ही निश्वास है। उपनिषद के ये श्लोक से ये समझना कठिन नहीं होगा कि ईश्वर और वेद मंत्र दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है और दोनों ही नित्य हैं, अर्थात ना इसका आदि है और ना अंत है, और इसी कारण से वेद अनादि भी है। ऋषियों को ये वेद मंत्र गहन तपस या ध्यान द्वारा प्राप्त हुआ, और ध्यान में से किस प्रकार मिला, तो इसके लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में 71वें मंत्र में बताया है कि ऋषियों ने अपने ध्यान में सूक्ष्म ध्वनि सुनी, जिसे ईश्वरवाणी भी कहा जाता है। इसी ध्वनि को ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना, स्मरण किया और इसी मंत्र को फिर गुरु शिष्य परम्परा से औरों तक पहुँचाया।
यज्ञेन वाच पादवीयमायन्तामन्ववृन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् तामाभृत्याव्यातधुपुरुत्रां तां सप्तरेभाव अभिसंनवन्ते।
वाणी के अर्थ को जानने वाले विद्वान लोगों ने वाणी के मार्ग को अर्थात पदों के प्रयोग द्वारा अभिव्यंजनीय अभिप्राय को यज्ञ से प्राप्त किया। अति इंद्रिय पदार्थों को विषयों को समझाने वाले तत्वदर्शी ऋषियों में प्रविष्ट हुई अर्थात उनकी अंतश्चेतना से उत्पन्न हुई उस वाणी को उन्होंने प्राप्त किया। ऋषियों से वाणी का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन विद्वानों ने उस वाणी को अर्थात वाणी के ज्ञान को ऋषियों से लेकर उनके देशों तक पहुँचाया, अर्थात उन्होंने सभी लोगों को वाणी का प्रयोग सिखाया। उस वाणी को गायत्री आदि 7 छंद शब्द अर्थात गान करते हुए चारों ओर सब स्थानों पर के रूप में सम्यक रूप से प्रसारित करते हैं। और कितने मंत्र दृष्टा हुए प्राचीन काल में, सटीक आंकड़ा निकालना तो मुश्किल होगा, परंतु आज के जाने माने विद्वान और शोधकार डॉक्टर रंगास्वामी एल कश्यप, जिन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड से ली है, उन्होंने अपने शोध में 400 से अधिक मंत्र दृष्टा या ऋषिगण थे, जिनमें 30 ऋषिकाएं भी थी। आप इनके द हिंदू में छपे इस लेख को जरूर पढ़ें, इसमें इन्होंने कई इंटरेस्टिंग बातें और भी कही हैं। जब प्राचीन व्यवस्था का अनुमान करना मुश्किल होता है, तब सत्य ज्ञान के साथ ब्रह्म का भी तीव्र गति से विस्तार होता है, जिनमें से कुछ धारणाओं का खंडन यहाँ करते हैं। तो पहला, तपस। कुछ लोगों का कहना है कि तपस की प्रक्रिया को वेदों में बताई गई है, तो फिर ऋषियों ने फिर कहाँ से तपस करना सीखा। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि विचार करना या गहन विचार करने के लिए किसी पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। ये गुण मानव अपने जन्म के साथ ही लेकर आता है। अब ग्रेविटी तब तो अस्तित्व में नहीं आई जब न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा, ग्रेविटी तो हमेशा से थी, बस न्यूटन विचारवान थे जिससे उन्होंने ग्रेविटी का रहस्य जाना। अब दूसरी धारणा, ऋषियों की योग्यता। अब कई लोगों के मन में ये विचार आएगा कि इन मंत्रदृष्टा ऋषियों में ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जो इन्हें ही मंत्र मिले, तो इसका सीधा उत्तर है इनकी योग्यता। इन ऋषियों के अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल ही इनकी योग्यता का कारण है। सनातन धर्म में कुछ भी रैंडम नहीं है, हर कार्य का कारण है और कर्म और इसके सिद्धांत तो हर ग्रंथ का विषय है ही। अब तीसरी गलत धारणा, सूक्ष्म ध्वनि। कुछ लोगों का मानना है कि यह सूक्ष्म ध्वनि आज क्यों नहीं सुनाई देती। ये समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझना चाहिए। मेडिटेशन या माइंडफुल का चलन आज ज़्यादा है और आज ऑनलाइन ढेरों ऐप्स, कोर्सेज या मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहले ये सब नहीं था। इसका अर्थ यही है कि आज के बिजी स्केड्यूल से स्ट्रेस बढ़ रहा है। प्राचीन काल में यह सहज था क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं थे इतने। तो ध्यान लगाना या माइंडफुली सारे कार्य करना सरल था। वैसे इसी विषय पर जूलियन जेनिस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च भी करी है जिसे बाइकैमरलिज्म बाइकैमरल माइंड कहते हैं। डॉक्टर जेनिस ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस इन द ब्रेकडाउन ऑफ बाइकैमरल माइंड में बाइकैमरल माइंड पर पहली बार चर्चा की है। तो अब अगला प्रश्न ये होगा कि बाइकैमरल माइंड क्या है। बाइकैमरलिज्म का अर्थ दो कक्षों में विभाजित होने की स्थिति। साइकोलॉजी में एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना है जो तर्क देती है कि मानव मन कभी किसी काल में उस स्थिति में संचालित होता है जिसमें संज्ञात्मक कार्यों को मस्तिष्क के एक हिस्से के बीच विभाजित किया गया जो आदेश या उपदेश करता है, और दूसरा भाग जो एक उस आदेश को सुनता और उसका पालन करता। जैसे कि कहा, डॉक्टर जूलियन जेनिस ने बाइकैमरल माइंड की पहली चर्चा अपनी पुस्तक में की है। वहाँ उन्होंने ये दावा किया कि मेडिटेरियन ब्रॉन्ज एज के अंत में करीब 3000 वर्ष पूर्व एक बाइकैमरलिज्म या ड्यूअल मानसिकता मानव मन की सामान्य और सर्वव्यापी स्थिति थी। जेनिस के अनुसार बाइकैमरलिज्म मन स्थिति में प्राचीन लोगों ने दुनिया को एक ऐसे तरीके से अनुभव किया होगा जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्ति की कुछ समानताएं होती है। किसी उपन्यास या अप्रत्याशित स्थितियों में सचेत मूल्यांकन करने के बजाय व्यक्ति एक आवाज़ या ईश्वर का वखान करता है जिसमें कोई सलाह या आदेश देता है और बिना किसी सवाल के पालन करता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रक्रिया के प्रति सचेत नहीं होगा। जेनिस की परिकल्पना को कमांड हेलुसिनेशन या आदेश मति भ्रम के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में पेश किया जाता है, जो अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के पहले रैंक लक्षणों के साथ साथ अन्य आवाज़ सुनने वालों से पीड़ित लोगों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ब्रेन की बहुत स्टडीज होती है और अनेक रिसर्च चलते रहते हैं। ब्रेन विश्व का सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया है और ये जनरेशन टू जनरेशन बदलता भी रहता है, तो इसको समझना इतना आसान नहीं। तो वापस हमारे विषय पर आते हैं कि सूक्ष्म ध्वनि समझने में कठिन हो सकता है, परंतु इसे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि शायद आज हमारे पास ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट या उपकरण नहीं हैं जो इसकी पुष्टि कर सकें। इसलिए बाइकैमरलिज्म भी अभी तक एक हाइपोथेसिस रूप में ही है। अभी भी अनेक साइंटिस्ट हैं जो इस विषय पर अपनी शोध आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें आज भी प्रमाणित नहीं होती, परंतु उसको नकारा भी नहीं जा सकता, जैसे ग्रेविटॉन। और भी अनेक थ्योरीज हैं जो उस समय प्रमाणित नहीं किया हो, परंतु भविष्य में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से प्रमाणित होता रहता है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन ने इस पर थ्योरी लिखी, परंतु उस समय स्पेस साइंस इतनी आधुनिक नहीं थी जितनी कि आज है, और जैसे ही उपकरण बनने लगे ये थ्योरीज प्रमाणित होने लगी। जब ये थ्योरीज पहली बार हमारे समक्ष आई थी तो क्या हमने उसे इग्नोर किया? शायद नहीं, वरना ये प्रमाणित कभी नहीं होता। अब चलते अगले एक और गलत धारणा की ओर, जहाँ कहा जाता है कि उस समय गुरु शिष्य व्यवस्था कितनी विकसित थी जो जैसे ही मंत्र मिलते शिष्य तक पहुँच जाते थे। गुरु शिष्य तो स्टोन एज या पाषाण युग से चलते आ रहे हैं, जहाँ पिता अपनी संतान को शिकार करना सिखाते थे। सनातन धर्म में तो ये परंपरा ईश्वर से प्रारंभ होकर ऋषियों के मार्ग से हम तक पहुँचा है। और रही उस समय की, जब मानव ने सभ्य समाज की रचना की और मंत्र दृष्टा के रूप में अनेक ऋषियों ने अपना योगदान दिया। ये कई शोध रिसर्च या लेख में कहा गया है कि उस समय अप्रोक्सीमेटली 1130 से लेकर 1180 शाखाएं थी, जो आज 15-20 ही रह गए हैं, और हर शाखाएं कर्मकांड, उपासना कांड और अंत में ज्ञान कांड की शिक्षाएं दिया करती थी। अब अगली गलत धारणा यह है कि मंत्रों की पुष्टि कैसे हुई कि यह ईश्वरकृत ज्ञान है और ना कि ऋषियों के अपने खुद के विचार। तो इसकी पुष्टि करने की दो युक्तियां या तर्क हैं। अब जैसा कि पहले बताया गया कि वेद का सब्जेक्ट मैटर अदृष्ट है, तो ये ज्ञान उत्पन्न करना मानव जाति के वश में नहीं हो सकता। फिर ये कहना कि ये केवल कल्पना है, तो ये ज्ञान की पुष्टि कभी भी नहीं हो सकती, परंतु ऐसा नहीं है। विधि अनुसार कार्य करने के बाद इसका फल दृष्ट है, मतलब दिखता है, जैसा यज्ञों में होता है, जो कल्पना के संदर्भ में नहीं हो पाता। मंत्रों को पाने वाले एक ऋषि नहीं थे, 400 से अधिक ऋषिगण थे जिन्हें वेद मंत्र मिले। तो इनमें से अगर कोई भी मंत्र कल्पना होती तो दूसरे मंत्रों के साथ भेद उत्पन्न होता, परंतु ऐसा नहीं है। वेदों में कोई भी मंत्र दूसरे मंत्रों के साथ कोई भी विपरीत बात नहीं रखता। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे इसके आगे की कहानी, कि कैसे ये सारे वेद मंत्र एकत्रित हुए और कैसे उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। कैसे ये सुनिश्चित किया कि वेद मंत्रों में कोई करप्शन या गलती ना हो। आज वेद हमारी सभ्यता का मुख्य अंश है। ये कहना कि वेद आजकल कोई पढ़ता नहीं तो ये गलत है। वेद कोई पढ़ता नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वेदों का ज्ञान हम तक नहीं पहुंच रहा। जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसे अनेक अदृष्ट विषय है जैसे आत्मा, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, ईश्वर, यज्ञ, देव, कर्म, कर्म फल, पुनर्जन्म आदि, जो मॉडर्न साइंस की देन नहीं केवल वेदों से उत्पन्न ज्ञान है। हम में से कितने लोग कुछ करने से पहले पाप पुण्य का नहीं सोचते? जरूर सोचते हैं। तो ये सारा ज्ञान प्राचीन काल से आज तक हमारे बीच है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।
जो मनुष्य शास्त्र के विधान का परित्याग करके अपनी कामनाओं और सहज वेगों के अनुसार आचरण करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। नमस्ते।